نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير یہ ٹوٹتے گھر یہ ہے ہمارا آج کا موضوع جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہم قرآن کے مطلوب انسان بنیں ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ویسے بن جائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یعنی قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے آج کے موضوع کے ناطے سے قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں بہت مطمئن رہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی میری زندگی اس طریقے سے بنائی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی کسی بھی بچے کے لیے کئی رشتے بن چکے ہوتے ہیں جو اس کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی کسی کو باپ بننے کی مبارک دی جاتی ہے تو کسی کو ماں کسی کو نانی اور کسی کو دادی اور اسلام کیا چاہتا ہے یہ اسلام میں گھر کی بنیاد شادی ہم سب بھی کسی شادی کا نتیجہ ہے مقصد تو شادی نہیں ہے لیکن بچے کی تخلیق سے پہلے کا عمل شادی کا عمل ہے یہ الگ بات ہے کہ جب بگاڑ شروع ہوا قوموں میں اور دوسروں کو دیکھتے دیکھتے کچھ ایسے بھی معاشرے ہمیں دکھتے ہیں کہ جہاں شادی اور بچے کو دو الگ چیزیں بنا کر پیش کیا لیکن اسلام چاہتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو اس کو پہلے سے کچھ لوگ چاہنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں ہم سب اپنے ارد گرد ان رشتوں کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ ہر رشتہ خوبصورت ہے چاہے وہ ماں باپ کا ہو میاں بیوی کا ہو بھائی بہنوں کا ہو یا دوسرے قریبی رشتہ داروں کا حتیٰ کہ استاد اور شاگرد کے بیچ کا رشتہ ہو یا پھر دوستی کا ہر روپ میں معاشرے کے مختلف رنگوں کی عکاسی ہوتی ہے چند سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ آپ دنیا میں آتے اور کوئی آپ کا منتظر نہیں کوئی آپ کا انتظار نہیں کر رہا تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی پھر اسی طرح اگر آج کل آپ کے گھروں میں کوئی بچہ ہے کسی کا پوتا کسی کا نواسا تو آپ دیکھیے سب کو بھول کر لوگ اس بچے کے گنگا رہے ہوتے ہیں یہ ایسے کرتا ہے اس نے یہ کیا یہ ایسے بولا یہ کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان محبتوں کا متلاشی ہے اور آدم اور حوا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو رشتہ زوجیت میں باندھا یعنی شوہر بیوی کے رشتے کی اہمیت اس بات سے سمجھیے کہ پہلا رشتہ جو اس زمین پہ آنے سے پہلے بنا ہم آج تک یہ کہتے آئے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں آدم اور حوا کا تو رشتہ جڑا ہی آسمانوں پہ تھا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پھر ہم نے ان کی زوج بنائی حضرت حوا علیہ السلام اپنے شوہر کی زوجہ محترمہ تھی اور جب وہ رشتہ جڑا تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے تو آج بہت سارے لوگوں نے اس رشتے کو گڑبڑ کر دیا اور اگر آپ اپنی زندگیوں میں اس چیز کو محسوس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گھر جن کو ہم گھر کہتے ہیں یہ چیزیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اہمیت دیں کہ نہ دیں لیکن رشتے اور گھر کچے ہو رہے ہیں آج شوہر بیوی سے بھی زیادہ آپ کو بات جو کہوں گی وہ کیا ہے گھر کی گھر ٹھیک ہے شوہر اور بیوی کے ذریعے سے بنتا ہے لیکن گھر کو گھر بنانے میں ہر فرد کا کردار ہے اور طبیعتوں میں اگر صبر اور شکر ہو اور انسان اپنے طور پر ان ساری چیزوں کو سمجھ لے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دی ہیں تو گھر جنت ہوتا ہے بہت دفعہ کیا ہوا ایک لیکچر میرا گھر میری جنت آج سے شاید 10-12 سال پہلے کیا اس سے بھی پیچھے کہ اگر آپ لیکچرز فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ کو سب سے زیادہ اس موضوع پہ لیکچر ملیں گے کیونکہ گھر میں سکون نہ ہو تو باہر سکون نہیں ہوگا ایک شوہر ہو یا بیوی ہو بچہ ہو یا بزرگ ہو گھر کے اندر سے سکون لیتا ہے تو گھر سے باہر جا کر سکون دیتا ہے کسی بھی معاشرے کو پرسکون بنانے کے لیے جو چیز بہت ضروری ہے وہ کیا ہے کہ گھر پرسکون ہو عام طور پہ آپ کے میرے مکان بنتے ہیں
मकान को घर बनाने में जो चीज़ दरकार है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सख्त ईंट, आपने कई दफ़ा घर बनते देखे होंगे पाकिस्तान में भी, सख्त ईंटों को जब जोड़ा जाता है तो एक ईंट फिर दूसरी ईंट नहीं रखी जाती, एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच में नरम सीमेंट, आपने घर बनते भी देखे होंगे पाकिस्तान में ऐसे ही बनते हैं ना, सीमेंट कह लीजिए या उसका एक बना कर कुछ उसमें रेत बजरी डालकर फिर सख्त ईंट के ऊपर नरम सीमेंट लगाते हैं, फिर अगली सी ईंट लगाते हैं, तो दीवार मजबूत से मजबूत बनती जाती है। अगर बीच में ये नरम गीली रेत या सीमेंट या ये मवाद ना हो तो दीवार हल्की सी ठोकर से गिर जाती है। बिल्कुल इसी तरह घरों की दीवार को भी मजबूत बनाने के लिए इसी नरम सीमेंट की ज़रूरत होती है। आज इसी सीमेंट की अदम मौजूदगी है, इसलिए घरों की दीवारें हल्के से झटके से ही टूट जाती हैं। ये नरम सीमेंट क्या है जो घरों को मजबूत बनाता है? ये मोहब्बत है, ये सब्र है, ये सर्व करने का जज्बा है, ये इफेक्शन है, ये मवद्दा है, ये वो है जिसको अल्लाह ने हमें बता दिया कि जब आपको ये मिल गया तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से घर को घर बनाना हम सब का फ़र्ज़ है। अभी चंद दिन पहले हमने एक लेक्चर इसी सीरीज़ में किया है, पाकिस्तान ट्रिप की सीरीज़ में, आप लोग देख भी सकते हैं बाद में, जिसमें मकान से घर यानी फ्रॉम होम टू हाउस या बल्कि हाउस टू होम। आज बड़े बड़े घर तो बना लिए, बाहर रहने वालों ने भी यहाँ अपने अपने बड़े बड़े घर बना के छोड़ दिए कि चलो कभी तो हम आएंगे तो रहेंगे और जब जाएंगे तो वहाँ रहेंगे। लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो क्या है? क्या इन घरों में रहने वालों में वो कुर्बत महसूस नहीं होती, जो पहले की मोहब्बतें थीं, जो पहले का मामला था वो नज़र नहीं आता? इसकी वजह क्या है कि आज हम मादा परस्त हो गए? अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ता है ना तो अल्लाह के बंदों से भी ताल्लुक जुड़ता है, और जितनी ज़्यादा इंसानों को इंसानों से मोहब्बत होगी, अपनाइयत होगी, उन्स जैसे इंसान लफ्ज़ उन्स से है, उतना ही इंसान दूसरों के लिए खुशी का ज़रिया बनेगा। इसके बरक्स जब चीज़ों से प्यार होने लगता है, सीमेंट फर्नीचर घर कितना बड़ा, और इसी तरह से मिजाज सख्त होने लगते हैं, क़ुरबानी का जज्बा नहीं रहता, तो माशरा टूट फूट जाता है। खुदा ना खास्ता कहीं एक जलजला आए तो कई इमारात में क्रैक आ जाता है, बिल्डिंग्स गिरने के काबिल हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब इंसानी ताल्लुकात में कभी कोई जलजला आता है, और आते हैं, अल्लाह ने खुद कह दिया वल नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफी वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुस फबशिर सबिरीन। सूरत बकरा की इस आयत को मसाइब खमसा वाली आयत कहते हैं। अल्लाह कहते हैं तुम्हें ज़रूर पांच मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें आके रहेंगी। ये दुनिया जन्नत नहीं है, ना ये फूलों की सेज है। दिस लाइफ और दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। आप जितना मर्जी अपने बच्चों को दुआएं दे, तेनों तत्ती हवा ना लगे, फिर भी लगेगी। और अगर बच्चे को तत्ती हवा ना लगी तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। आज साइंस ने भी हमें इस बात का सबक दे दिया कि गर्मियों में इंसान का जिस्म ज़्यादा ग्रो करता है, सर्दी में तो इंसान की बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जम जाती हैं ना। तो ज़िंदगी में दुख आएंगे, आजमाइशें भी आएंगी। शादीशुदा ज़िंदगी या घर वाली ज़िंदगी ये सब्र और आजमाइश वाली ज़िंदगी होती है। हर चीज़ अगर अपनी जगह पर हो, हर इंसान अपना रोल सही अदा करे तो चीज़ दुरुस्त होती है। जहाँ घर का कोई एक फ़र्द भी, चाहे वो शौहर हो, चाहे बीवी हो, चाहे वो बुज़ुर्गों की सूरत में सास हो या ससुर, या फिर बच्चों की सूरत में पोते नवासे हों, कोई एक फ़र्द बिगड़ जाए सारे घर का माहौल बिगड़ जाता है। आप कई घरों को जानते होंगे, कोई घर में एक शख्स है गुस्से का तेज़ है, सब सहमे रहते हैं, घर में एक खूक आलम है। इसी तरह कभी घर में किसी एक को गीबत की आदत होती है तो सारे घर में परेशानी, किसी को चुगलियाँ खाने की आदत होती है, जिधर बैठे उधर बैठे, जिधर बात की उधर बात कर दी तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि गड़बड़ का शिकार हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते जाएंगे कि हमने टूटते घरों को बचाना है, घर क्यों टूटते हैं, घरों के टूटने की वजूहात क्या हैं, ये सब कुछ हम सब अपने आप से पूछें। हर बंदे को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बहुत बड़ी सोच दी हुई है। हर इंसान अपने अंदर की कैफियत को बहुत अच्छी तरह जानता है। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वलो अलका माजीरा। इंसान दूसरों से छुप सकता है, खुद से छुप नहीं सकता। दूसरों को साबित कर देगा कि मैं सच्चा हूँ, लेकिन अगर वो सच्चा नहीं है तो वो कभी भी अपनी नज़रों में बड़ा नहीं बन सकता। उसको ऐसे महसूस होता है कि मैं अल्लाह ताला की नज़रों से भी नहीं छुप सकता, बंदों से कैसे छुपूंगा। बिल्कुल इसी तरह से जितना ज़्यादा आप घर के मौजू पे बात करते जाएंगे आपको ये बात बहुत समझ आ जाएगी कि घर टूटते क्यों हैं। गलत फहमियों की वजह से, नाशुक्रियों की वजह से। यानी अगर मैं अपने इस पूरे टॉपिक को समअप कर दूँ ना, तो सूरत निसा की आयत 34 में अल्लाह सुब्हान तआला ने औरत और मर्द का किरदार बताया। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है। अब कव्वाम अरबी का लफ्ज़ है, आपको ज़रा सा बोझल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आसानी में समझ लीजिए केयर टेकर, देखभाल करने वाले, जिम्मेदार। मर्द हर रूप में, इधर शौहर नहीं कहा गया, रिजाल सारे ही मर्द। और आप देखते हैं कि मर्द अपने वजूद के एतबार से देने वाला ही होता है। एक बच्चे की दुनिया में आते ही बाप की सारी कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। अच्छे बाप अपने आने वाले बच्चों का जिम्मा खुद लेते हैं। इवन बच्चे की पैदाइश, वो किसी मैके या लड़की को कहा जाए कि जाओ बाप और भाइयों से पैसे लेकर आओ तो ये करो, उस पर नहीं लगाते, खुद करते हैं उसकी खिदमत, अपनी बीवी की हर जरूरत पूरी करते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, उसका खाना पीना, उसकी स्कूलिंग, उसकी फीसें सब बाप अदा करता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक बच्चा जब परवरिश के सारे मराहल से गुजरता है, बल्कि अगर बच्चे को बच्ची कह दीजिए और आप और मैं अपने ऊपर भी ले सकते हैं, तो शुरू से हमारे बड़े होने तक हमारे बाप ने हम पे खर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक लड़की जब ज़रा बड़ी हो जाती है बाप के बाद, अल्लाह बाप को सलामत रखे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बाप को कुछ हो जाता है तो फिर भाई और चचा, कितना प्यारा हमारा दीन है, हर रिश्ते को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिया जाता है। फिर बड़े अरमानों से पैदा हुई बच्ची को लोग ससुराल में भेजते हैं, तो उसकी केयर टेकर लिस्ट में एक और शख्स का इजाफा होता है, जिसको आप कह सकते हैं वो कौन है, शौहर। फिर शौहर कमाता है। अल्लाह ने औरत को शहजादी बनाया है, आप मैं मलकाएं हैं, रानियां हैं। हमें दीवारों के ऊपर लगी हुई अल्लाह सुब्हाना ताला ने खूबसूरत डॉल्स नहीं बनाया। औरत अपने हिस्से का काम करे और मर्द अपने हिस्से का काम करे, यही होम स्वीट होम होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, उस वजह से जो अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी, वबिमा अनफकु मिन अमवालिहिम, दूसरी वजह कि मर्द अपने माल कमाते हैं और खर्च करते हैं। कभी घर बैठकर अकेले में आप में से हर बहन सोचे, आपकी उम्र 30 साल हो सकती है, 40 के भी आप में से कुछ होंगे, 50 के भी होंगे, आज तक मेरी ज़ात पे कितना खर्च किया मर्द ने। चले हम घर के लफ्ज़ के साथ जो शौहर का सोचने लग जाते हैं उसी को सोच लीजिए, आपके शौहर ने शादी से लेकर आज तक क्या क्या आप पे खर्च किया। शादी के खर्चे, हक महर, फिर मुंह दिखाई, फिर जेवरात, फिर बरी, फिर हर महीने का खर्च, फिर हर वक्त कितना दिया उसने, और आप उसकी कितनी शुक्रगुजारी करते हैं। आप कहते हैं करना नहीं था, कोई एहसान किया नहीं, एहसान किया है आप पे। अगर कोई बुरा इंसान टक्कर जाता तो क्या करती हैं, कोई नशई, कोई भंगी, कोई आप कह सकते हैं कि बुरी आदतों में शिकार, अल्लाह का दिल की गहराई से शुक्र अदा करे, सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह। घरों के टूटने की बहुत बड़ी वजह नशुकरापन है। मर्द बीवी की कदर नहीं करता, बीवी मर्द की कदर नहीं करती। सही जिम्मेदारियां क्या हैं कि मर्द कवाम बने? माली मामलात हैं, जिस्मानी तौर पे मर्द मजबूत होते हैं और मर्द को मजबूत होना चाहिए। और इसी तरह से औरत को क्या कहा गया? फसालेहात कानितातुन हाफिजातुल लिलगैब बिमा हफिजल्ला। औरतें तो इतादशार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हकूक की हिफाजत करती हैं। मैं अक्सर एक मिसाल दे देती हूँ कुर्सी और मेज की। इस वक्त भी आप देख रहे हैं मेरे सामने एक टेबल है और उस पर चीजें रखी हुई हैं और चेयर है जिस पे मैं बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। एक वाज़े फर्क आपको दिखेगा, मेज ऊंचा है ना तो चेयर काफी नीची है। अगर मेरी कुर्सी को जुबान दे दी जाए और वो कहे कि मुझे मेज से नीचे क्यों किया, मुझे तो इसके बराबर करना चाहिए। इसको आज के दौर में कहते हैं इक्वालिटी। आज के दौर में वेस्ट ने जो हमले किए हैं ना इस्लाम पे, उनमें बहुत सारी बातों को पीछे डाल के सिर्फ अपने मौजू पे रहो ना तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा कर दिया। और वो क्या कि मुस्लिम औरत बिचारी मुसलमान औरतों को बड़ा मारते हैं, ऑप्रेस्ड है। और हमारे गांव और हमारे देहातों की कोई झूठी सच्ची खबरों को हाईलाइट करके मीडिया पे कवरेज देकर दिखाते हैं, देखो पाकिस्तान में औरतों को मार पड़ती है और फुला और फुला। आप यहाँ कितनी बैठी हैं माशाल्लाह, महज़ब घरों से हम सब। आपको मार पड़ी कभी? आपकी खाला को पड़ी, फूफो को पड़ी? अल्लाह ना करे कोई एक खानदान में मिसाल हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी। अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, ये सिर्फ प्रोपेगंडा है। जब मैं 1,000 औरत को अगर जानती हूँ और मुझे तो नहीं याद उसमें से किसी औरत को मार पड़ती है, इल्ला ये कुमासी होगी जो आके रोती होगी मेरे मियाँ ने शराब के नशे में मुझे मारा। तो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, लेकिन आज लोगों ने ये दुनिया को दिखाना चाहा कि मुसलमान औरत बिचारी, हाय बिचारी, हाय चादर और चार दीवारी में डाल दिया, हाय कैद है। भाई चादर और चार दीवारी तहफ्फुज़ है या तुम्हारे लिए कोई कैद है? देखिए एक लफ्ज़ होता है सिक्योरिटी, सेफ्टी, और एक लफ्ज़ होता है प्रिजन। फ़र्क क्या है? जो मुजरिम है ना वो जेल समझेगा सिक्योरिटी को, और जो अपने आप को कीमती समझता है बॉडी गार्ड्स लेकर फिरते हैं बड़े लोग, वो कहता है कि जी बड़े बंदे हैं हमारी सिक्योरिटी का इशू है। वो औरत जो मुजरिम है ना उसको घर और घर में रहते हुए जो पाबंदियां लगती हैं वो सारी कैद लगेंगी। मगरिब ज़दा जहन के साथ अगर आप सोचेंगे तो आप मर्दों के घर में रोब को, मर्दों के घर में आकर और बीवी होने के नाते बीवी और इसी तरह बाकियों के ऊपर कुछ हक जमाने को कैद समझेंगे। और वो औरतें जो खुद को कीमती समझती हैं वो इसको सिक्योरिटी समझेंगी। ये कीमती नगीने हैं, टूट ना जाएं। अल्लाह के नबी ने एक सफर के दौरान ऊंटों को चलाने वाले एक शख्स को कहा कि ये ना गुनगुनाओ। अरब लोग अपने ऊंटों को चलाते हुए गुनगुनाते थे, तो गुनगुना रहा था कोई शख्स, तो आपने कहा कि इस काफले में नगीने हैं, उनके दिल बड़े नरम होते हैं। यानी ऐसा रिक्कत वाला कोई नशीद ना गाओ कि औरतों के दिल टूट जाए। अब आप सोचिए कि ये सारी बातें आपको मुझे क्या बता रही हैं कि इस्लाम औरत को इज्जत देता है, औरत के साथ है। अब सवाल ये कि घर क्यों टूटता है फिर? इसलिए कि अल्लाह ने मर्दों को कवाम बनाया, हमने उनको गुलाम बना लिया। मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है, आज यही बेलिबास हो गए। तीसरी वजह यह है औरत खुद को मर्द के बराबर समझती है, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर एक दर्जा फजीलत दी, सिर्फ एक दर्जा, अलैहिन्ना दर्जा। और ये दर्जा मैं कैसे समझा सकती हूँ आपको? 50-50 है इक्वेलिटी, तो 51 और 49, ये है अलैहिन्ना दर्जा। कोई औरत को बिल्कुल नीचे पाँव की जूती और मर्द को सर का ताज नहीं बनाया, बस इतना फर्क है जितना इस कुर्सी और इस मेज में फर्क है, दैट्स इट। तो ये जरूरत थी। अब कुर्सी को ऊंचा कर दें तो क्या मैं आपके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ? अभी भी चेयर नीची थी तो मैंने कोशिश की कि थोड़ी ऊंची हो जाए, है ना। टेबल को नीचा कर देते हैं तो क्या ये सारी चीजें टेबल चेयर की एक बराबर होंगी? औरत अपना काम करे, मर्द अपना काम करे, घर पुरसकून है, घर नहीं टूटेंगे। इसलिए औरत को औरत रहने दीजिए, मर्द को मर्द रखिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मर्द का किरदार घटता ही जा रहा है। मर्द अपने उस कवामियत के दर्जे से नीचे, और औरत को कहते जाओ कमा के लाओ, और वो कमा के लाएगी तो कहेगा ये तो मेरा हिस्सा है, और ये और वो। दूसरी तौर पे मर्द को बाहर के काम करने थे। ये औरत का काम थोड़ी है कि जाकर ग्रोसरी खरीदती फिरे। ये औरत का काम तो नहीं है कि प्लम्बर आए और वो सर पे खड़े होकर उससे काम कराए। मसला क्या हुआ कि हमने मर्दों को पैसा कमाने की मशीन बना दिया बेचारों को। हमारे मुतालबे बहुत हैं, हमारे अखराजात बहुत हैं। अब वो बेचारे एक जॉब करके तो कमा कर नहीं सकते, फिर बेचारे नाइट शिफ्ट करेंगे, कभी वीकेंड्स पे आएंगे। अब जब औरतों में कनात ना रही, सब्र ना रहा, विश लिस्ट इतनी लंबी है, तो मर्द क्या करे, फिर कहाँ से लाएगा? अब जब मर्द का जिंदगी का मकसद कमाना 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 बना, तो जाहरी बात है फिर कुछ जिम्मेदारियां औरतों पे पड़ी। यहां तो माशाल्लाह आपको दसियों नौकर मिल जाते हैं ना, ड्राइवरों से लेके, मासियों से लेके, बच्चों को देखने लेने वाली। बाहर की दुनिया की औरत से बड़ी मजलूम औरत दुनिया में कोई नहीं देखी मैंने। वो बाहर की अगर रानी है तो घर की नौकरानी भी है। वो भी सुबह मर्द के साथ ही निकलती है, कमा के लाती है। मर्द तो घर आकर चाहता है कि मुझे पका पकाया गर्म खाना मिले, उस बेचारी ने बनाना होता है। फिर उसने बच्चों को भी देखना है, फिर उसने अगले दिन की तैयारी भी करनी है, फिर उसने अपने शौहर को भी खुश रखना है। वो मशीन थोड़ी है। जब आप मर्द बनेंगे तो फिर यकीनी बात है मर्द को औरत बनना पड़ेगा। फिर वो बांट हो गई जो आज आपको दिखती है, कि अगर दिन में मैं बच्चों को संभाल रही हूँ तो रात को आप संभालिए। एक दफ़ा पैम्पर मैं चेंज करूँगी बच्चे का, एक तरफ आप। और बाज़ दफ़ा इतना गैर मुहसिबाना फेल देखा जाता है कि बच्चियों के पैम्पर्स बाप बदलते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जॉब पे। तो तरतीब बदल गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है 5885, आपने फरमाया कि उन मर्दों पर अल्लाह की रहमत नहीं है, यानी लानत के लफ्ज़ हैं, जो औरतों जैसा चाल चलन इख्तियार करें, और उन औरतों पर भी जो मर्दों जैसा चाल चलन इख्तियार करें। वजह क्या है इसकी, क्या हो गई वजह कि औरत औरत नहीं रही? अब इसको कपड़े पहनने तक भी ना रखिए। बास कहते हैं कि मर्दाना कपड़े औरतों के कपड़े, वो तो है ही है। वो जैसे एक मर्द अगर घरारा पहन लेगा तो कितना बुरा लगेगा, एक मर्द और झुमके पहन के फिर अच्छा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो एक औरत जब मर्दों के कपड़े पहनती है तो वो भी उतनी ही बुरी लगती है। आज हमारी बेटियां जो कपड़े पहनती हैं, जरा झांकिएगा जाके। मैं तो बाहर की दुनिया को छोड़ दूं अभी, मैं तो अपने मुल्क में आकर कभी कभी बच्चियों के कपड़े देख के हैरान हो रही हूँ कि ये किन के नक्शे कदम पे चले। और बापों को कुछ नहीं होता। यानी अगर आपके घरों में कोई बच्ची टाइट्स पहनती है, आज जाकर उनको रीयूज कीजिए, उसको किसी भी और काम में ले लें, उसके ऊपर कुछ पहना ले, सर्दी से बचने के लिए पहनने पहन ले, लेकिन खाल के ऊपर चढ़ी हुई एक खाल पहनकर वो बच्ची बच्ची नहीं लगती। दूर से तो पता भी नहीं चलता कि ये इंसान की टांगे हैं या हैवान की। स्किन के ऊपर एक स्किन चढ़ा दी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता जा रहा है। तो ये घर जन्नत होता अगर इसमें हर वक्त हर मामला बेहतरीन तरीके से होता। तो फिर सवाल ये है कि घर क्यों टूटते हैं? मैं बहुत डिटेल्स में जाने से पहले अगर आपको सिर्फ पॉइंटर्स में ये बातें बता दूँ ना कि घर टूटते क्यों हैं, तो सबसे पहली बात तो मैंने बता दी है कि औरत औरत होने के नाते से अपना किरदार पूरा अदा नहीं कर पा रही। उसको बाहर की दुनिया का शौक है, उसकी शॉपिंग लिस्ट बड़ी लंबी है, उसको दोस्तों को भी मिलना, और घर बैठकर उसने दिन में 4-6 घंटे सोशल मीडिया पे गुजारने हैं। उसने फेसबुक पे अपनी फ्रेंड्स को भी कुछ टाइम देना है, और यूट्यूब चैनल पे भी इधर उधर घूमना है, और उसने कुछ रेसिपीज भी देखनी है, कुछ फैशन के ट्रेंड्स भी देखने हैं, कुछ उसने शॉपिंग फ्रॉम होम भी करनी है। उसके काम बहुत है। मर्द का अपोजिट ले लीजिए, बहुत ही कमाना है या बिल्कुल नहीं कमाना। तो पहली बात यह है कि ये कुर्सी कुर्सी होने का हक अगर अदा ना करेगी, ये मेज मेज होने का हक अदा ना करेगा, तो फायदा नहीं होगा। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत ज्यादा शिकवे करना, शिकायती रवैये। आप कभी भी देखें, और इंतहाई نامناسب لگتے ہیں وہ جوکس جو شوہر بیوی کے تعلق کے بارے میں ہوتے ہیں، مذاق، بیوی کا مذاق. بعض مرد اپنی مردانگی سمجھتے ہیں بیوی کو برا کہہ کر، روپ ڈال کر، گالی دے کر. اور شوہر بیوی کے رشتوں میں جو عجیب جوکس ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں، یہ کوئی بندش ہے، شکوے، تم ایسی نہیں ویسی ہو، شادی ہوئی تو تم ایسی تھی، اب ایسی ہو گئی ہو. اور پھر خاص طور پہ شکل و صورت، جسم جھسے پہ بات کرنا. دیکھیے، اگر بیوی پتلی نہیں رہی تو مرد بھی تو وہ نہیں رہا نا. اور کیا آپ نے پتلی لانی تھی، کوئی شو پیس تھا؟ یہ چیزیں بہت ثانوی ہیں، لیکن ہم اس کو فورس پہ لے آتے ہیں. میڈیا، چمکتی اسکرینیں، چمکتی اسکنس، کئی آئینوں کے پیچھے سے جب آپ کسی بھی عام سی عورت کو دیکھیں گے بڑی حسین لگے گی. آپ کی بیوی کو ماڈل نہیں ہے، آپ کو اس کے حسن میں نقص دکھ رہے ہیں. آپ کے بچے پیدا کرتے کرتے اگر اس کا جسم ہی بیچاری کا کمزور ہو گیا ہے اور جسم کی شیپ ٹھیک نہیں رہی، تو یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ کے بھی تو چہرے پہ وہ بات نہیں رہی، تو یہ شکوے. پھر اسی طرح تم گھر صاف نہیں رکھتی، اور مرد کے ساتھ بیوی کا یہ شکوہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری فرمائشیں پوری نہیں کرتے، میں نے یہ کہا تھا وہ نہیں لگا. 10 چیزیں بیوی کہے اور مرد بیچارہ صرف 9 لے آئے، ایک بھول جائے، تو بیویوں کو عموماً وہ 9 چیزیں نظر ہی نہیں آتی، ان کی آئی سائٹ ہی ویک ہو جاتی ہے. دیکھتے ہی کہیں گی پودینہ نہیں لائے آپ، یعنی سب کچھ پودینے میں چٹ، نہ کھائے آپ آج پودینہ، نہ چٹنی بنائے. کم از کم اس غریب کا شکریہ تو بولیں کہ 9 چیزیں آپ لائے ہیں، ایک ایک چیز کا بولیں شکریہ، دوں آپ کو کام چھوٹا سا. گروسری کن کن کے شوہر لاتے ہیں، ہینڈ ریز کریں، تو اس کا مطلب سارے خود لانے والے بیٹھے ہیں. چیزیں منگوانا، نقص کون کون نکالتا؟ چلیے ہم سپوز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا بریڈ لے آئیے گا، انڈے لے آئیے گا، دودھ لے آئیں، اور کیا منگاتے ہیں آپ لوگ بتائیں، سیب لے آئیں اور گوشت لے آئیں بیچارہ، اور ایک اور چیز بتا دیں، دہی بھی لے آئیں. اب وہ یہ 6 چیزوں میں سے دہی بھول گئے، اور آپ کی نظر سب سے پہلے جانی اس چیز پہ جو نہیں آئی. یہ ہماری عادت ہے، کیا کریں، مجبور ہے، جو نہیں ہوتا نا ہمیں وہی اچھا لگتا. اچھا، اب وہ لے آئے 5 چیزیں، چھٹی نہیں لائے، کیا کریں گے آپ؟ اپنے شوہر کو بولیں، بولنا چاہتے ہیں مل کے، آپ دودھ لے کر آئے، آپ کا بہت شکریہ، بولیں یہ جملہ سب مل کے. دل تو نہیں کر رہا، عادت ہی کوئی نہیں، آپ پہ لے آنے ہیں، آپ کیوں لاتی ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کہیں گے ان کو لانا ہی نہیں آتا، اور بیچارے لے آئے تو پسند کس کو آتا ہے؟ یہ آپ باسی لائے ہیں، یہ ایسی لائے ہیں، یہ ویسی لائے ہیں. ایک ایک چیز کا شکریہ ادا کریں، آپ کا شکریہ دودھ لانے پہ، آپ کا شکریہ بریڈ لانے پہ، آپ کا شکریہ انڈے لانے پہ. یقین کریں آپ ابھی 4 چیزیں بولی ہوں گی، وہ خود ہی کہیں گے میں بھی آتا ہوں، اور تھوڑی دیر بتائیں گے نا تو دہی کا ڈبہ ہاتھ میں ہوگا، بیگم اب اس کا بھی شکریہ ادا کر دیں کہ میں یہ بھی لایا ہوں. ہم شکوے شکایتیں کر کے ایک تو اگلے کا موریل ڈاؤن کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں. آپ کو بھی ہر وقت کوئی ٹوکتا رہے روکتا رہے نا، تو کبھی بھی بڑا کام نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب لوگ بہت باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو بندہ اپنا مقصد ہی چھوڑ دیتا ہے. ایک دفعہ کچھ مینڈک تھے تو وہ کسی گہری چیز میں سے نکل کر اوپر آنا چاہ رہے تھے، اور کچھ لوگ بیٹھے کمنٹ کر رہے تھے یہ نہیں چڑھے گا، یہ بہت مشکل ہے، یہ ہے یہ ہے. وہ بیچارے مینڈک چڑھتے تھوڑی دور چڑھ کے نا تو گر جاتے. تو کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دے رہے ہیں نا، یہ بیچارے اس کی وجہ سے ہمت ہار دیتے ہیں. لیکن ایک مینڈک جو تھا وہ اوپر چڑھ گیا، وہ اس گہری کھائی میں سے نکل کے آ گیا، تو لوگ بڑے حیران تھے، اور کہتے ہیں جب اس کا چیک اپ ہوا تو وہ بہرا تھا. یہ ایک کہاوت ہے، باتیں کر کر کے لوگوں سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لے پاتے. اور پھر اس سے اگلی وجہ بھی ساتھ ہی لکھ لیں، ہر وقت کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے 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 جھگڑے، اور جھگڑوں میں تو رحمت نہیں آتی، برکت اٹھ جاتی ہے. اپنے فرائض ادا نہیں کی آپ نے، حقوق سے آپ بڑے آشنا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں؟ صحابہ کرام آ کر پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی ہماری بیویوں کا ہم پہ کیا حق ہے، हम क्या कहते हैं जी, उनका क्या फर्ज है, जरा इसको बताओ ना बीवी कैसी होती है। फिर एक और बहुत बड़ी वजह देखी गई है शौहर बीवी में, कम्युनिकेशन गैप है, और उसकी वजह आज के दौर में टेक्नोलॉजी है। दूर वालों से आपके रबते हैं और साथ बैठे वालों के आप दिल की बात नहीं जानते, एहसास नहीं है। एक ये भी वजह है, बीवी सारा दिन बच्चे रखती है, काम करती है, खाना पकाती है, घर के बुजुर्गों को देखती है, तो शाम को आके मर्द अगर ये कह दे तो सुबह तक कीता की है, तुमने किया क्या सुबह से, घर बैठी रहती हो, वो फलां देखो कमा के भी लाती है, एहसास नहीं। और मर्द बेचारा अगर सारा दिन बाहर रहता है तो बीवी उसको कि आप तो वैसे ही बाहर मौजें कर रहे होते हैं, पर ना आपको कोई ऐसा नहीं है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना, एक बहुत बड़ी वजह जो घरों के टूटने की है ना, वो हमारे शुक्र की कमी है। शुक्र जिंदगी में बढ़ाते जाएं, मिठास बढ़ती जाएगी। आप चाय में चीनी डालते हैं? आप में कौन कौन है जो फीकी चाय पीता है? आटे में नमक के बराबर, कई लोग तो चीनी के लिए चाय पीते हैं, कुछ चाय में चीनी डालते हैं और कुछ चीनी में चाय थोड़ी सी डाल लेते हैं। जिस तरह कड़वी चाय में शक्कर डालें तो वो चाय मीठी हो जाती है, इसी तरह जिंदगी की तलखियों, परेशानियों और घबराहटों में आप जितना शुक्र डालती जाएंगी आपकी जिंदगी मीठी हो जाएगी। आज हमें शुक्र करना नहीं आता, और मुझे कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को शुक्र करना सिखाएं, ना शुक्रापन बहुत है, घर वालों का, नौकरों की ना शुक्री, इतने वो आपके काम करके जाती है, एक पतीली छोड़ गई बेचारी, अगले दिन आपने पहले आते ही उसको ये खबर देनी है कल तुम बर्तन छोड़ गई थी। और अच्छी बात है अगर वो किसी दिन ना आए तो आपको लग पता जाएगा कि वो करती क्या है। अमूमी रवैया हमारे यहाँ ना शुक्री का, बच्चे माँ बाप के ना शुक्र, और इसी तरह से।